प्रॉपर्टी किस को जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस को रहनगे।
S&S Lawyers को इन्ना सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000।
दारुल खैर सेंटर इस्तोविल, जहां एक मुकम्मल इस्लामिक सेंटर बनने जा रहा है ताकि इस्तोविल में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आसानी हो। यहां डेली और जुमे की नमाजों के साथ साथ इवनिंग हिफ्ज क्लासेस और संडे को कुरान क्लासेस का आगाज हो चुका है। 6000 स्क्वायर फीट पर बनेगा इस्तोविल का नया पहला इस्लामिक सेंटर। May 13 को क्लोजिंग डेट है। इस नए काम में दिल खोल कर ताउन कीजिए। फॉर डोनेशन विजिट darulkhair.ca या कॉल कीजिए 416-292-1818 या 416-738-5934।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
बैंक अल्फला पेश करता है रोशन डिजिटल अकाउंट। अब बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ये अकाउंट फौरी डिजिटली खुलवा सकते हैं। अभी www.bankalfala.com विजिट करें, आज ही अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं। इस डिजिटल अकाउंट में जब चाहे पैसे डालें और जब चाहे पैसे वापस ले जाएं और पाएं अपने मुल्क में सरमायाकारी करने के मौके। ये बैंकिंग का नया अंदाज है और एक नए दौर का आगाज है। बैंक अल्फला, रोशन मुस्तकबिल, डिजिटल पाकिस्तान।
Can you afford your local coffee from your favorite coffee shop? Can you afford to donate that coffee to us once a month? Can you commit to $20 a month and serve your sisters and brothers with disabilities to help us reach our goal so we can acquire the Dean Villa?
Help this worthy cause in this month of Ramadan. Donate at deansupportservices.ca. Dean, D-E-E-N, supportservices.ca. Go now.
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यूब थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब 519-622-0660, quicktruckcube.com।
बटाला सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, हलाल मीट ते सब्जियां नाले फल भी ताजा मिलदे, इत्थे मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलदे, भल्ले पकौड़ियां ताजा मिठाइयां गर्म समोसे मिलदे, बटाला सुपर मार्केट।
स्कॉर्पियो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, 200 मार्कम रोड, स्कारबोरो, मार्कम रोड ते इंग्लैंडन दा संगम। फोन 416-264-3111।
सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू अल्लाह। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर वो इदारा है जो बिना किसी कलर, रेस, रिलीजन के हर एक की खिदमत में सरगरम है। इस माह रमजान में जो कि नेकियां बांटने और समेटने का महीना है, आइए हम और आप मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के प्रोजेक्ट रमजान के जरिए जरूरतमंद अफराद की मदद करें। $60 की ये गिफ्ट बास्केट जिसकी रिटेल वैल्यू $100 है, डोनेट करके एक खानदान के 4 अफराद को महीने भर के लिए राशन मुहैया कर सकते हैं। आइए और इस नेक काम में अपना हिस्सा डालिए। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर 416-754-8116। टोरंटो से बाहर रहने वाले टोल फ्री 1-866-754-3111।
MWCanada.org।
क्या आपको मॉर्गेज के लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? मॉर्गेज डिलीजेंट के मुकेश चौहान कैन हेल्प। विद 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ही स्पेशलाइजेस इन मॉर्गेजेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। कॉल मुकेश चौहान 6475127000। और अगर आपको बैड क्रेडिट, कंज्यूमर प्रपोजल या बैंक्रप्सी जैसे इशू हैं और बैंक ने डिक्लाइन कर दिया है, वेदर यू आर फर्स्ट टाइम होम बायर और नीड रीफाइनेंस और प्राइवेट मॉर्गेजेस, कॉल मुकेश चौहान 6475127000 FSRA 102.52, condition applies।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਏਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828, 905-450-2828।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
खुशियों पर लिमिट और फन की स्पीड अगर कम हो तो सब कुछ है बोरिंग, और ऐसा ही है कुछ आपके इंटरनेट के साथ। मगर अब ना लिमिट की फिकर और ना ही स्पीड का गम buzzmax.ca के साथ। जी हाँ, हाई स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट या होम फोन के साथ बंडल ऑफर के मजे उड़ाइए, वो भी अनबिलीवेबल प्राइस में। नो कॉन्ट्रैक्ट, नो क्रेडिट चेक, यानी मैक्स स्पीड अनलिमिटेड फन के साथ। फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू buzzmax.ca और कॉल 416-800-0900।
विलेज जीटीए में सबसे बड़ा पाकिस्तानी हलाल बुफे। एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को रमजान बुफे के साथ। मंडे टू थर्सडे 23.49, बच्चों के लिए 11.99, 4-11 इयर्स। फ्राइडे टू संडे 28.49, बच्चों के लिए 13.99, 4-11 इयर्स। इफ्तार पैकेज, कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 647-774-4888, 647-774-4888।
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान। सेंट्रम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपैरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, असिस्ट इन रियल एस्टेट। He will make mortgage easy for you. Kokab Javed, Mortgage Agent,
416-445-6065. بارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد।
रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हमारे फहम ज़फर प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। हम आपके साथ आज भी 8 बजे तक हों, 8:15 तक ऑन एयर हम आपके साथ होंगे, 8:15 तक, ताकि हम अजान के सेगमेंट को आपके साथ अफ्तारी का सेगमेंट ज़रूर कर सकें। आज अगर अफ्तारी के लिहाज से देखा जाए तो आज रोज़ा जो है वो 14वां रोज़ा बताया गया मुझे, मेरा ख्याल है 13वां रोज़ा एग्जैक्टली जी 13वां रोज़ा है आज का, और जुमेरात का दिन है, 13वां रोज़ा है आज। 8:02 पर रोज़ा खुलेगा, 8:02 पर आज की इफ्तारी होगी, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। कहते हैं कि जिस्म की ज़कात निकालें, बीमारियों से निजात पाएं, रोज़े की हालत में चूँकि सुबह से शाम तक हम कुछ नहीं खाते, हर इस दौर भूख और प्यास की तकलीफ से भी वाकिफ होता है, लेकिन इसके जिस्मानी फवायद बहुत सारे हैं। कोशिश करेंगे कि हम इसका जिक्र भी आगे प्रोग्राम में कर सकें। आज के प्रोग्राम में 2-3 चीज़ें रमज़ान के हवाले से भी बात होगी, मगर 2-3 चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज तकरीबन 1400 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया कोविड-19 की वजह से, और इसका जो नया वेरिएंट B2A है उसकी वजह से अब बहुत से लोग मास्क भी नहीं इस्तेमाल करें, मगर साथ आपकी अपनी सेहत है, कोशिश करें डबल बल के मास्क का इस्तेमाल करें। بہت سے لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں یوکرین سے ان کا رخ پولینڈ کی طرف سے، کینیڈین فورسز خاص طور پہ پولینڈ کی طرف روانہ ہوئی ہیں تاکہ ریفیوجیز کی مدد کی جا سکے. ہمارے جو میئر ٹوری ہیں، اب دیکھیے کتنا، دو سال اللہ کا کرم رہا ان کے اوپر، مگر اب الٹیمیٹلی ان کو کووڈ ہو گیا. میئر ٹوری جو ہیں ٹیسٹ پازیٹو فور کووڈ
19.
پتہ نہیں کس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہوں گے،
ان کا تو کام ہے نا گھومنا پھرنا.
مگر دیکھیے برے وقت میں تو نکل گیا تھا نا تب بھی،
مگر ان کو بڑا مائلڈ ہوا ہے. It is not anything serious. He is still working from home. تو جب آپ بات کر رہی ہیں نا اس کی، تو وہ جو نئی ماڈلنگ آئی ہے آج انٹیریو سائنس ٹیبل کی جانب سے، مئی جو اگلا مہینہ کچھ دنوں بعد ہی ہے، 15 دن کے بعد 3,000 to 4,000 ہاسپٹلائزیشن ہوں گی.
وہی بات ہے نا کہ اپنی حفاظت خود کریں آپ.
جنوری میں 4183 واز دا ہائیسٹ، اور اس وقت یہ تھا کہ وہاں پر جگہ نہیں تھی ہاسپٹلس میں، قطعی جگہ نہیں تھی. اور اب وہی ہونے جا رہا ہے مئی اور مئی میں کہ
3,000 کو کراس کریں گے،
3,000 to 4,000
ایگزیکٹلی. مگر میٹوری کو بھی ہوا. ایک اور خبر ہے لا سوسائٹی، اب دیکھیے صاحب کینیڈا میں ہم آپ ہیں، مجھے یاد ہے جب میں نے ریئل اسٹیٹ کا ایگزام دیا تھا نا تو آئی واز سرپرائز کہ میں نے پاکستان میں اتنے امتحان دیے. چیٹنگ ہوتی ہوگی، ہوتی تھی، لازمی ہوتی تھی. ہم بھی دو چار لفظ یہاں لکھ کے لے کے، فارمولے ہی لکھ کے لے کے جایا کرتے ہوتے تھے. تو وہ جب میں نے ریئل اسٹیٹ کا ایگزام دیا، آپ امیجن کیجئے گا کہ جو اسٹوڈنٹ ایگزام دیتا ہوا ایگزامینیشن ہال سے باتھ روم تک جاتا تھا تو انویجیلیٹر ساتھ جاتا تھا. یہاں ٹورنٹو کی میں بات آپ سے کر رہی ہوں. اور مطلب آئی واز سرپرائز کہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر آپ کی آئی ڈیز چیک ہو رہی تھیں تو پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی بڑے بڑے شہزادے لوگ ہیں، ایک کی جگہ جا کے دوسرا امتحان دے دیا کرتے ہیں. آج اب لا سوسائٹی، آپ سوچئے گا وکیل بننا ہے، لا سوسائٹی کہتی ہے ان کا پرچہ لیک ہو گیا. کین یو بلیو اٹ؟
ہاں وہ لیک نہیں ہوا، وہ ایک خاتون ہے، وہ انہوں نے جسٹ کوئی انہوں نے پیسہ نہیں لیا تھا مگر وہ تھوڑا سا ان کے لیے ہیلپ کر دی، امپورٹنٹ کوشچنس بتا دیے.
ہاں یہ تو ہم بھی بتایا کرتے ہیں،
ہاں تو امپورٹنٹ کوشچنس بتا دیے. اور اس کی
بہرحال لا سوسائٹی نے کہا، لا سوسائٹی آف انٹیریو نے کہا ہے کہ اسٹرانگ انڈیکیشن دیٹ جو بار کا ایگزام ہے اس کا مٹیریل واز لیکڈ امپورٹنٹ کا. اسٹیٹسٹک کینیڈا کہتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ سیلز اپ ہوئی ہیں فیبرری کے مہینے میں، ہول سیلز البتہ ڈاؤن چلی گئی ہیں. یہ تو تھی یہاں کی خاص خبریں. آج پاکستان آپ کو لے کے چلنا چاہتی ہوں. ابھی دو منٹ کے بعد ہم پاکستان جائیں گے. پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گی، جہاں پہ میں بہت ساری آج آپ کو بتایا، ڈی جی آئی ایس پی آر کے جناب جو جنرل بابر ہیں، انہوں نے بھی آ کے اپنا بتا دیا. اور پاکستان کا مسئلہ پتا ہے کیا اس وقت؟ مجھے لگتا ہے ہر آدمی اپنی کلیریفیکیشن کے بیچ میں ذرا زیادہ ہی کلیریفائی کر لیتا ہے تو پچھلی اسٹیٹمنٹ یاد نہیں رہتی اور اگلی اسٹیٹمنٹس بدلتی چلی جاتی ہیں. مگر آج اگر پاکستان کی بات کریں تو انہوں نے جو ہمارے جنرل بابر ہیں، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے جو دو چار باتیں کہی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ دمارش کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں سرزنش کسی چیز کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سازش پر ہی نہیں دیے جاتے. یہ انہوں نے کہا ہے، جیسے جس لیٹر کا ذکر کیا ہمارے ایکس پرائم منسٹر نے، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. ڈی جی ایس پار کے انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تھا. عمران خان کی جو بیان کے حوالے سے انہوں نے اپنا یہ بیان دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور موٹر ایئر، آپ کو بتائیے کہ یہ اب ضد میں چیزیں چلنی ہیں، اب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے جو لوگ شوکت خانہ میں جاتے ہیں ان کے زکوٰۃ کے بینرز اتارنا شروع کر دیے ہیں. جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے بھی عوام کے ساتھ بھلا کرنے کی بجائے مقابلتاً کام کیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ موٹر ویز جو اورنج گاڑیاں تھیں وہ موٹر ویز کو بند کر کے رکھ دیا تھا. آج ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت کے پاکستان کے، انہوں نے پشاور موڑ سے لے کے ایئرپورٹ اسلام آباد تک انہوں نے کہا کہ میٹرو کو فوری طور پر چلانے کی ہدایت کی، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی کہ 3.5 سال کیوں نہ اس کو چلایا گیا. امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں اینتھنی بلنکن, انہوں نے ہمارے جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں ان کو مبارکباد دیا اور انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ, آپ پرائم منسٹر بن گئے, ہمیں بڑی خوشی ہوئی. پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب 16 اپریل کو ہونا ہے, خیال تھا کہ شاید ڈیلے ہو جائے مگر 16 اپریل کو ہی ہوگا. مگر یہاں پر ایک غلط فہمی یا ابہام پیدا ہونے لگا تھا کہ جو علیم صاحب ہیں جو کہ آپ کے عمران خان صاحب کے ساتھی ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, تو خیال یہ پیدا ہوا تھا کہ شاید ان کے درمیان اور حمزہ کے درمیان کوئی رفٹس آ گئی ہیں, مگر دونوں نے اس چیز کو کلیریفائی کیا, انہوں نے کہا نہیں کوئی رفٹ نہیں. مگر 16 اپریل کو جو یہ الیکشن ہونا ہے چیف منسٹر کا, اس کے لیے پرویز الہی صاحب بھی ہیں اور حمزہ شہباز بھی ہیں. لیٹس سی ہو ونز. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ سمینہ خاور ہمارے ساتھ ہوں گی. سمینہ خاور کے بارے میں اگر میں آپ کے ساتھ بات کروں تو سمینہ خاور صاحبہ کا تعلق پاکستان سے ہے اور سمینہ خاور مسلم لیگ کاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. 2004 سے سمینہ خاور صاحبہ اپنی اس فیلڈ میں ہیں, ممبر پارلیمنٹ منتخب بھی ہوئی ہیں. اس کے بعد آج کل اب کہاں پہ ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے محترمہ سمینہ خاور سے. مسلم لیگ کاف سے آپ کا تعلق ہے اور مجھے پتہ چلا کہ وہ آج کل ایز اے جو پریزیڈنٹ ہیومن رائٹس کی مسلم لیگ پنجاب, مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ریپرزینٹ کر رہی ہیں ہیومن رائٹس کی پریزیڈنٹ کے طور پہ. ہمارے ساتھ شامل ہیں, بہت شکریہ سمینہ خاور صاحبہ آپ شامل ہوئی, آپ کا بہت شکریہ. سو کائنڈ اینڈ سو کائنڈ آف یو. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام عارفہ, تھینک یو ویری مچ.
سو کائنڈ آف یو کہ آپ نے ٹائم دیا. سمینہ جی آپ مسلم لیگ کاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی 770 AM ریڈیو اسٹیشن. ریڈیو کے ساتھ ساتھ آپ ٹیلی ویژن پہ ہمارے ساتھ ہیں, فیس بک پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو اپنی گاڑیوں میں نہیں تو اپنے ٹیلی فونز پہ سن رہے ہیں, ہماری ایپس پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور یقیناً وطن سے دور رہتے ہوئے ہم تمام اپنے وطن کے لیے بعض اوقات پریشان بھی ہوتے ہیں, اور یہ پچھلے دنوں میں جو صورتحال بھی ڈیولپ ہوئی ہر انسان اس سے خائف تھا اور وریڈ تھا کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا. بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی. اب تک سینٹر کے بارے میں میں ابھی بلکہ آپ سے بات ہونے سے 2 منٹ پہلے کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کے جو 3 سال گزرے وہ بھی مقابلے میں ہی گزر گئے, پچھلی حکومتوں کا ذکر کرتے ہوئے گزر گئے اور اس وقت کو ضائع کیا گیا جبکہ ہم کنسٹرکٹیو طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے تھے. اب جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو آج جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے وہ پشاور موڑ سے لے کے ایئرپورٹ تک جو میٹرو ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ 3.5 سال تک کیوں بند رہی اور اس کا باقاعدہ حساب کتاب لیا جائے گا کہ کس کی, اور واقعی ملک کا پیسہ تو اس میں لگا ہوا تھا نا, بلاک ہوا ہوا تھا. اب اگلا الیکشن جو ہے وہ ہے ہمارے چیف منسٹر کا الیکشن ہے, اور چیف منسٹر کے الیکشن میں 2 نام ہیں, ایک جناب حمزہ شہباز صاحب کا ہے اور دوسرا نام جو ہے جناب پرویز الہی صاحب کا ہے جو کہ بڑے منجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں. انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی اسی چیز میں اپنی گزار دی. تو کیا فرمائیں گی کہ 16 تاریخ کی پکچر آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے؟
جی عارفہ بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا مجھے, اور جتنے ہمارے وطن سے باہر لوگ ہیں ان کو میرا سلام اور اپنی اللہ تعالی رحمتوں میں رکھے ان کو,
آمین.
اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو پنجاب کا درجہ حرارت بہت ٹیمپریچر ہائی ہوا ہے عارفہ, پنجاب کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا میں آپ کو کہوں گی. پنجاب چونکہ پاکستان کا دل ہے تو سب کی نظریں پنجاب پہ لگی ہوئی ہیں آج کل. تو عارفہ سب سے پہلے تو دیکھیے چودھری پرویز الہی صاحب کو سبھی جماعت کے جو ہیڈز ہیں انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ کو ہم چیف منسٹری دے دیتے ہیں, آپ ہمیں اسمبلی میں ووٹ کرا دیجئے. تو چودھری صاحب کا مطلب ووٹ کا نہیں تھا نہ چیف منسٹری کا تھا. دیکھیے ان کا ویژن جو ہے وہ اگر آپ پیسٹ میں چلی جائیں تو وہ ایجوکیشن ریفارم پروگرام پہ کام کر چکے ہیں بحیثیت سی ایم, وہ ہیلتھ ریفارم پروگرام پہ کام کر چکے ہیں, 1122 انہوں نے بنائی, دل کے امراض کے جتنے کارڈیالوجی کے ہاسپٹلز ہیں ان کے دورے پنجاب جب وہ پنجاب کے سی ایم تھے تو انہوں نے بنائے تھے. ان کے پاس ایک حکمت عملی ہے उनके पास एक विजन है, क्योंकि वो पहले भी सीएम रह चुके हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस था कि मैं लोटा क्रेसी की तरह बनकर लोटो को इलेक्टेबल्स जो है, आई एम सॉरी इट्स अ बैड वर्ड बट आई हैव टू यूज दिस वर्ड बिकॉज इट्स एग्जम्प्टेड इन द पार्लियामेंट. तो ये लोटा वर्ड जो है ये वो इलेक्टेबल्स हैं जो टिकट और निशान अपनी पार्टी का है, और जब उनका दिल चाहता है, जब उनकी बोली लगाई जाती है, जब उनका जमीर खरीदा जाता है, तो वो उस निशान को छोड़कर फ्लोर क्रॉस करते हैं और दूसरी पार्टी को वोट कर देते हैं. तो चौधरी साहब का विजन ये नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि मैं लोटा क्रेसी को फरोग दूं. आपको याद होगा जब मिसाके जमहूरियत मोहतरमा ने और मियां नवाशी साहब ने साइन किया था लंदन में, तो उन्होंने स्पेशल 63A को डिस्कस किया था, आर्टिकल 63A, कि हम इसकी खिलाफ वर्जी अब नहीं करेंगे. मियां साहब आप
नहीं करवा दी,
मोहतरमा बनती हैं, तो वो 63A की सख्त खिलाफ वर्जी दोबारा से छांगा मांगा बनाया गया आरफा, दोबारा से सिंध हाउस सजे हुए, और लाहौर का कोई ऐसा होटल नहीं है आरफा जहां पे इन इलेक्टेबल्स को, इन लोटों को छुपा कर रखा हुआ है हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि वो कैंडिडेट हैं सीएम के. लेकिन आप देखें विजन और डिफरेंस देखें दोनों में, दोनों कैंडिडेट्स में. परवेज इलाही साहब लोटा क्रेसी नहीं करना चाहते थे, और हमजा साहब ने लोटों को लेकर मैंडेट चोरी करके पीटीआई का, और उन्होंने अब शब खून मारा है कि जी अदम एतमाद ले आइए पंजाब असेंबली में, हम सीएम बनना चाहते हैं. इस तरीके से ये जमहूरियत है, ये एक तरफ से कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो ये वोट को इज्जत दे रहे हैं, ये जमहूरियत है कि आपके पास जो मैंडेट तो है नहीं अवाम का. आप जब इलेक्शन हुए थे पूरी सीटें लेकर अक्सरियत के साथ असेंबली में नहीं बैठे, असेंबली में बैठे हुए लोगों को खरीद कर आप दोबारा से हुकूमत बनाना चाहते हैं, क्या ये जमहूरियत है? तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने इस चीज को बिल्कुल खातिर खानी रखा. हालांकि आपने देखा होगा जरदारी साहब, फजल रहमान
साहब मिलने के लिए गए थे,
सब उनको मनाने चाहते थे कि प्लीज आप हमारी हमें वोट करें हमारे साथ और हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे. उन्होंने ये रिफ्यूज किया, उन्होंने एलाए अपना इमरान खान साहब के साथ खड़े होना बेहतर समझा. उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत के लिए और अपनी अवाम के लिए इस वक्त आपका साथ नहीं देंगे, हम अपनी जमहूरियत के लिए अवाम के लिए इमरान खान के साथ खड़ा रहना ज्यादा बेटर समझेंगे. तो वही हुआ, आज वो इमरान साहब के एलाए हैं. एक और बात आपको आरफा बताती चलूं, इमरान खान साहब तीन साल से, साढ़े तीन साल से वो परवेज इलाही साहब की बात नहीं सुनते थे, थोड़ी उनमें ये जो
नर्गिसियत थी
जी,
नर्ग यानी वो अपनी बात को मनवाना चाहते थे. हालांकि पॉलिटिक्स में आप देखिए दो पार्टियां ईंट कुत्ते का बैर था. मोहतरमा बेनजीर को उन्होंने हटवाया था बिफोर उनका टिन्योर पूरा होने के, और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने हटवाया था टिन्योर पूरा होने के से पहले, मगर आज वो दोनों शीर शक्कर होके बैठे हुए हैं. तो सियासत में तो कोई आखिरी लफ्ज मुझे लगता है ही नहीं.
बिल्कुल बिल्कुल आपने आरफा,
और इमरान खान साहब को चाहिए था थोड़ा समझ लेते.
सियासत में नहीं होता, हमने सबको साथ लेकर चलना होता है. इख्तलाफ राय हम रखते हैं, मगर ये नहीं कि हम इख्तलाफ बराए इख्तलाफ करते रहे. इमरान साहब जो थे वो सिर्फ विक्टिमाइज की सियासत कर रहे थे साढ़े तीन साल से. वहां पर उनको चौधरी साहब ने समझाया है, चौधरी शुजात साहब के बेतहाशा बयान टेलीविजन पे आए हैं, वो बाकायदा उनको बताते थे. उनको दरअसल ना सियासी हिकमत नहीं थी इमरान साहब को, वो पहली दफा बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तो अब जब चौधरी साहब उनके साथ हैं, चौधरी साहब बहुत विजडम, बहुत सियासी दाना उनको कहा जाता है चौधरी.
तो क्या लगता है आपको अब कल की सूरत हाल से कि सेंटर में तो यकीनन मतलब आ गई, मुझे गम इस बात का है कि क्या इस मुल्क में टैलेंट और है नहीं. ये तमाम वो लोग हैं जो कि बैरूनी ममालिक में भी रहते हैं. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर आप बाप है और चीफ मिनिस्टर जो है वो बेटा है, तो इसका मतलब है राजदारी में तो अंदर अंदर कुछ से कुछ हो सकता है. तो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, द फादर एंड सन कैन नॉट हैव दीज टू. एम आई राइट माजिद भाई? और गलत ठीक तो
जी आरफा, बिल्कुल आपने सही कहा. ये जो ये सियासत है ना, ये शुरू से अगर आप पास्ट में जाएं तो मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और शहबाज शरीफ साहब सीएम थे. तो अब वो प्राइम मिनिस्टर खुद बने और अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। मतलब उनकी उनके क्या उनके जो जितने इलेक्टेबल्स हैं जो क्या इतनी बड़ी पार्टी है नून लीग, क्या उनको किसी और पे ट्रस्ट नहीं है? वो सिर्फ अपने हाथ में हर पॉलिटिक्स हर सियासत अपने हाथ में रखना चाहते
हैं। अगर आप पिछला टेन्योर याद करें तो नवाज शरीफ साहब के दौर में और किसी मुल्क का वजीर खारजा न होना बहुत बड़ी कोताही की बात है, और तीन बड़ी मिनिस्ट्रीज जो थी जो मियां साहब ने अपने हाथ में रखी हुई थी। मैं वापस मुड़ती हूँ क्योंकि टाइम की भी जाहिर किल्लत है। मेरा सवाल है कि चीफ मिनिस्टर के लिए दो नाम है, जनाब परवेज इलाही साहब का भी है और इसके साथ साथ हमजा साहब का भी है, और आर्टिकल 63 इन्होंने ही पेश किया था कि उन्होंने कहा था कि कोई फ्लोर क्रॉस नहीं करवाएगा, मगर चलिए जी इन्होंने दोबारा छांग मांग वाली शुरू की, अपने बंदों को बंद करके रख लिया। तो व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि इमरान खान बेचारों ने उसकी बहुत गलती है, मतलब उसकी स्टबननेस सबसे बड़ी उसकी डिटाई है, उसकी सबसे बड़ी गलती दूसरी ये है कि उसने अपने बंदों को पीछे करके जो लोटे थे उनको लेके आ गया। अब अनफॉर्चुनेटली कल आपके पाकिस्तान में कहा गया है कि जो लफ्ज लोटा इस्तेमाल करेगा उसको हम इतना मारेंगे इतना मारेंगे इतना मारेंगे, तो भाई अब जब है ही लोटे तो अब आपको मैं क्या कहूँगी? मैं थाली का बैंगन कहूंगी, मैं आपको लोटा कहूंगी?
व्हाट इज द थर्ड वर्ड? मैं यही बात कहती थी कि लोटे को लोटा ही कहेंगे ना हम लोग। अब ये गुल्लू बट वाली सियासत कर रहे हैं, ये अब विक्टिमाइजेशन करना शुरू हो गए, थ्रेट कर रहे हैं टेलीविजन पे आके। अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए।
अच्छा कनेक्शन प्रॉब्लम कर गया मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था क्योंकि मैंने उसके बाद पाकिस्तान लेके जाना है और हमारा एक इंटरव्यू भी है जिसको आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जनाब समीना खावर, हमारे समीना खावर हयात साहबा हैं, इनके फादर इन लॉ भी मेंबर पार्लियामेंट हैं मुस्लिम लीग काफ के साथ, आप भी मुस्लिम लीग काफ के साथ ही आपका भी ताल्लुक है समीना खावर साहिबा। समीना जी, आप यूर प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स मुस्लिम लीग पंजाब के साथ आपका ताल्लुक है। इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि ऑपोजिशन में भी जो लोग बैठेंगे वहां पे वो अगर जो ऑपोजिशन लीडर आप इनके इनके 123 इस्तीफे कबूल हो गए हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि जो लोग ऑपोजिशन में भी बैठेंगे वो लफ्ज पीटीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब ऑपोजिशन कौन सी पार्टी से बनाएंगे? ये कोई 5-6 बंदे जो आजाद अरकान के, हु विल बी द ऑपोजिशन नाउ?
जी आरिफा, अभी 16th of April का फैसला हो जाए पंजाब में जो
सेंटर के बारे में
इलेक्शन होने जा रहे हैं।
जी मैं सेंटर के बारे में,
तो उसके बाद बहुत बड़ी आपको खबर मिलेगी कि हमने न्यू स्ट्रेटजी क्या बनाई है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये बना के रखी हुई है, सिर्फ वो ओपन करेंगे जब 16th of April को, ये परसों इंशाल्लाह ताला जो फैसला हो जाता है। तो ये जहां पर आपने अलीम खान और बाकी लोगों का जिक्र किया, बिल्कुल कुछ ऐसी कोताहियां हुई थी इमरान खान साहब से
कि
वो उन लोगों ने इनको बहुत हेल्प की हुई है इनकी जमात बनाने में।
देखिए जी, फौजिया कसूरी ने बड़ी मदद की हुई है, फौजिया कसूरी साहिबा ने
बहुत मेरी फेवरेट हैं, वो तो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त भी हैं, आपा भी हैं। तो इन लोगों ने, ये इनके पायनियर्स थे। अगर वहां पे गलती हुई है तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं, हम पार्लियामेंट हमारी पार्लियामानी मीटिंग्स होती हैं उसमें इनको अपना करना चाहिए था इजहार।
ये बहुत बड़ी गलतियां थी। फौजिया कसूरी यहाँ स्टूडियो में तशरीफ भी लाई थी और यही उन्होंने कहा था कि हम तो मगर भाई क्या आफरीन बात है कि उसने एयर पे आके कोई उल्टी बात नहीं थी इमरान, उन्होंने जरूर ये कहा था कि हम लोगों ने अपना खून दिया हुआ इस पार्टी को और नहीं मिला। इसका मतलब है कि 16 तारीख को अब इलेक्शन है, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। मगर मुझे लगता है कि मेरा एक सवाल क्विकली अगर आप जवाब दे दें, क्या शो करता है कि वालिद साहब वजीर आला हैं और बेटा जो है वजीर आजम है, बेटा वजीर आला होगा और जो भांजी है भतीजी जो है वो अब्बा जी की फोटो गोद में लेके बैठती है, तो ये क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं?
जी आप देखिए, मारूसी सियासत को पोर्ट्रे कर रहे हैं सिर्फ, जो शुरू से इनका शेवा रहा है। ये अपने अंदर ही रखते हैं हर ओहदे, इतनी बड़ी जो
नहीं, मगर ये तो भाई और भतीजे के दिल में रिफ्ट आ जाएगी ना, कि अगर इसका मकसद है कि ये कहा जा रहा है कि आप बैठे हुए हैं मगर पीछे ये आदमी है, अल्टीमेटली ही हैज टू कम।
जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं आरफा, कि ये इनका जो माइंड सेट है ना, कि हम ये नहीं देख सकते हैं कि कोई और बंदा विराजमान हो किसी सीट पर, ये खुद ही अपने हाथ में हर चीज लेकर चले जाते हैं। भाई जो टास्क फोर्सेज हैं, जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, जो एडवाइजर्स हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, जो उनकी ड्यूटीज हैं, उनको बांटें।
अच्छा, ये
हर चीज अपने हाथ में।
आप इतना काम कर रही हैं और इतने काम कर रहे हैं, अरे हम भी इंग्लैंड बैठी हैं, मेरा ख्याल अभी उन्होंने भी देख लीजिएगा, उनको भी किसी एक औरत एक सीट के ऊपर नॉमिनेशन हो जानी है एज ए मेंबर पार्लियामेंट, जो स्पेशल सीट्स होती हैं।
गवर्नर सर्वेंट साहब की मिसेस की भी हो गई है, रिहाम साहिबा को भी ये करा दिया गया है बाबर के हम आपको ही।
इस मुल्क की औरत का हाल आप देखें बनता क्या। अच्छा, गवर्नर साहब की बीवी बन गई है मेंबर
जी, उनको भी नॉमिनी कर दिया ना उन्होंने, अपना हल्का बना लिया है, वो मुस्लिम लीग की टिकट पर वो अगला इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी। तो देखिए, गवर्नर साहब ने भी पहले 3.5 साल एंजॉय किया है अपनी सीट को। अलीम खान साहब ने भी पार्टी में रहकर 3 साल कुछ नहीं बोले, जब वो
उनके साथ ज्यादती हुई,
सारा बोलना शुरू कर दिया।
उनके साथ ज्यादती हुई कि उन्होंने सारा खर्चा किया अलीम साहब ने, मगर वो कहते हैं कि भी बुजदार को हटाया ही नहीं मुझे, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा है वो वाला, उनके साथ ज्यादती हुई है कि भाई आपने इतना बंदे का पैसा लगवा दिया और अल्टीमेटली आप कम से कम उसको, क्योंकि पाकिस्तान में तो करोड़ों करोड़ों और अरबों अरबों पैसे खर्च करना शुरू कर दिए लोगों ने, एट द एंड ऑफ द डे दे वांट टू हैव पोजीशंस।
अच्छा, आरफा ये वो नए लोग हैं जो पैसा खर्च करके अपने आप को फॉरेन सीएम बनाना चाहते हैं। मैं इससे इख्तलाफ इसलिए करती हूँ कि सीएम के पास विजडम होनी चाहिए, सीएम को पता होना चाहिए कि उसने 12 करोड़ आवाम को संभालना है पंजाब की। वो ऐसे तो नहीं कि आप खर्चा करें उनके हेलीकॉप्टर्स पे, उनकी पार्टीज को बनाने में, और उसके बाद आप कह दें कि मुझे मैंने तुम पे पैसे लगाए हैं, मुझे सीएम बना दो।
आपको क्या
ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपको क्या लगता है 16 तारीख को कि परवेज इलाही साहब इतने मंझे हुए, और मैं परवेज इलाही साहब की एक बात की, हालांकि मैं, मेरी कोई वो पार्टी नहीं है, मगर मैं माजिद भाई ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे ना, डेड बॉडीज जो जाती हैं, ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की बात है, तो उन्होंने कहा था कि पीआईए को ओवरसीज पाकिस्तानी इतना बिजनेस देते हैं, तो ये हम शुक्र गुजार
कमाल का काम किया उन्होंने
बड़ा। अच्छा, एक और भी उनका कोई काम था, बड़ा खास काम था, मुझे याद है मैंने उन दिनों में हाईलाइट भी किया था, तो उन्होंने ये कहा
रेस्क्यू 1122 होगा,
रेस्क्यू 11, और मैंने रेस्क्यू 1122 को काम करते हुए देखा है। आप यकीन करें कि मेरे समय आई वॉज इन द अमार हॉस्पिटल, तो मेरा रूम था रोड की तरफ और एक एक्सीडेंट हुआ और आई वॉज सरप्राइज कि कैनेडा में ऐसे होता है, ये यहाँ कैसे हो गया। तो आप यकीन कीजिएगा अगले 5 मिनट के अंदर वहां पे एम्बुलेंसेज मौजूद थी। तो ये रेस्क्यू सर्विस भी इन्होंने शुरू की थी, और ये जो डेड बॉडीज को फ्री लेके जाना है, उन्होंने कहा था सारी उम्र वो पाकिस्तानी बिजनेस देते हैं, तो अगर डेथ किसी की हो जाएगी तो पीआईए फ्री, हालांकि इससे पहले चार्जेस हुआ करते होते थे। मगर मैं क्विकली आपसे एक मिनट आपको दूंगी, 16 तारीख को देखिए मनी टॉक्स, ऑफ कोर्स मनी टॉक्स, ये तो इंटरनेशनल सेइंग है और पाकिस्तान में तो पैसा बहुत ही बोलता है। आपको क्या लगता है कि, मुझे लगता है कि जो ताकत है वो हमजा शहबाज जीत जाएंगे, मगर अगेन ईगो की बात है, परवेज इलाही साहब के लिए तो ये बहुत बुरी खबर होगी कि एक इतना मंझा हुआ पॉलिटिशियन जो है, कैसे उसको एक बच्चा और वो भी कल का जिसके पास तजुर्बा ना हो मार दे सकता है,
और उसके पास सिर्फ लोटे हैं आरफा, ये भी ऐड कर लें, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा आरफा। जो होमवर्क और जो स्ट्रैटेजी हमने 16 अप्रैल की बनाई है, आपको खुशखबरी दूंगी मैं इंशाल्लाह, और पंजाबी में कहते हैं चंद चढ़ेगा ते कुल आलम देखेगा।
चलो जी, मैं जो 17 नु तानु एयर ते लवांगे फिर इंशाल्लाह ताडे नाल शेयर करांगे,
जरूर आपने लेना।
पर मेनू ये लगता है कि हुण आंदियां दिनां दे विच ना जिन्हिया कुड़िया इतने कम शम नहीं ना लभदा, तो तुसी कुछ ऐसा काम कर लो पाकिस्तान किसी पार्टी दे नाल तल्लुक बना लो, तो जिहड़ी जिहड़ी पार्टी ने आंदे जाना है ते तुहानू एक एक सीट मिलती तुरी जानी है कि नहीं। रेहाम जी तो चली गई
लेकिन मेरी जमात में आरिफा बहुत मेरिट पे ये फैसला होता है, और आज मुझे आप देख लें कि मैं तीन टेन्योर में एमपीए बनी हूं, और मैंने क्या क्या बिजनेस पार्ट दिए असेंबली में, कैसे हमने काम किया है, आपका काम बोलता है।
सही।
आज जो आपने मुझे बुलाया है तो मैं काम करती हूँ,
मैंने आपकी कल
तो आपके जैसी खातून, मैं आपको क्रेडिट दूंगी कि आपके जैसी खातून जो बाहर बैठकर भी अपने मुल्क के ऊपर नजर रखे हुए हैं और ऐसी पॉलिटिक्स जिसने के दर्जा हरारत बढ़ाया हुआ है, आप उसको अफ्या कर रही हैं, तो क्रेडिट आपको भी जाते हैं।
मैंने कल आपकी कॉन्वर्सेशन की ट्रेल को फॉलो किया था और उस ट्रेल को फॉलो करने के बाद मैंने आपको कॉल किया था। आई थैंक यू वेरी मच यू टुक माई कॉल एंड आप मेरे साथ शामिल भी हुई। हम आपको दोबारा बॉदर करेंगे 16 तारीख के इलेक्शन के बाद, और वो बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होगा। सुबह में आपका इलेक्शन होना है, जब रात होना है यही टाइम होना, तो मैंने आपको कॉल
जी इंशाल्लाह। और मैं खुशखबरी के साथ आपको मिलूंगी क्योंकि हमने पूरी तैयारी की हुई है। हम इनको नहीं, लोटों को बिल्कुल असेंबली का मैंडेट नहीं छीनने देंगे अपना।
आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने याद दहानी करवा दी, बहुत शुक्रिया कि ये दो काम रेस्क्यू वो 1-1 की सर्विस ऐसे पहुंचती है, ऐसे हेल्प जो पहुंचती है ये भी।
और आज जब इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम किया था चौधरी साहब ने, तो वजीफे देते थे बच्चों को, फ्री किताबें देते थे, मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन उन्होंने की हुई थी। माओ को बकायदा वजीफे माओ को भी दिए जाते थे कि वो गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए खर्चा नहीं होता, तो वो खर्चा भी उनका स्टाइपेंड के सूरत में बांधा गया था,
वजाइफ की सूरत में। बहुत
वजाइफ दिए थे, बिल्कुल वजाइफ दिए गए थे। तो बड़ा अच्छा चौधरी साहब ने ये विजडम है उनका, ऐसे विजनरी लोग पंजाब संभाल सकते हैं। ये घरों से ड्राइंग रूमों से उठ के सियासत करने वाले लोग जिनके वालिद प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, जो अपने बेटे को कहें कि तुम अब यहाँ सीएम बन जाओ
जी, अब सिर्फ मामले यही चल रहे हैं। आप देखिए, मैं अगली 3 नस्लों तक आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स का नाम बता सकती हूँ। आगे प्राइम मिनिस्टर होंगे हमजा या मरियम साहिबा तो डेफिनेटली, और उसके बाद जुनेद। 3 तो मैं बता सकती हूँ, जुनेद का आने वाला बच्चा, आई डोंट नो बेटी पैदा होती है कि अब बेटा पैदा होता है, तो विल बी द 4th वन। बहुत शुक्रिया आपका, और अब मैं पाकिस्तान लेके जाऊंगी जनाब खबर नईम हाशमी, हमारे साथ शामिल होंगे, और उसके बाद आई टेक यू टू अमेरिका, अमेरिका से हमारे साथ शामिल होंगे एलन रिप, अ ग्रेट मैन एंड इज अ ग्रेट ज्यू, ग्रेट राइटर, और उनका ताल्लुक ऑफ कोर्स यूक्रेन से भी है। यूक्रेन और इंटरनेशनल जो वर्ल्ड मैप चेंज हो रहा है, ये किस तरह चेंज हो रहा है, थोड़ी इसके बारे में बात करेंगे। व्लादिमीर पुतिन न्यू नाजीज की बात करते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया समीना जानू, यू आर लुकिंग ग्रेट।
थैंक यू, आपको मेरा सलाम देना है आपने,
अभी पहुंचा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपको,
थैंक यू, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। आप हमारे साथ रहिएगा, चंद एक स्पॉन्सर्स, वेलकम बैक।
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया, सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो। दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और नए पेशेंट्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश भी है। कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट, हैमिल्टन में, 905-521-0540, 905-521-0540।
सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दें। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर की $0 ट्रांसफर फीस का फायदा उठाएं और अपने परिवार तक पहुंचाएं और भी ज्यादा पैसे। आज ही cibc.com/gmt इवेंट पर जाएं और प्रोमो कोड GMT इवेंट के साथ अपने पहले ट्रांसफर पर $300 तक वापस पाएं। शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू।
एशियन फूड सेंटर वालों आप सब नु विसाखी दियां लख लख मुबारका। विसाखी दे इस खुशी दे मौके ते एशियन फूड सेंटर लेके आया है 8 तो 19 अप्रैल तक विसाखी सेल। शेर देसी स्टाइल आटा, आमंड्स, इंडियन रू अफजा, मदर डेयरी मिल्क, दाला, फ्रेश सब्जियां, वन सवनिया, ताजिया मिठाइयां। गल की जी, सारे ही इन स्टोर आइटम्स ते विसाखी सेल लग चुकी है। एना ही नहीं, साडे कोल इंडिया वाले भांडियां दी पूरी भरमार है। एशियन फूड सेंटर, 8 लोकेशंस इन ओंटारियो।
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक, ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
First mortgage, second mortgage, या फिर हो गए लोन।
सोचो ना बस, बिल्कुल भी उन्हें मिलाओ फोन।
416-502-8000 स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काक दा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000
लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
अकाल 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 मॉर्गेजेस।
अरे भाई हम जानते हैं कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, जैसे रेड लाइट सिग्नल, बैंक की लाइन और हर रोज वो कॉफी की लाइन। मगर हम करते हैं आपके अपनों के बैंक अकाउंट्स पे मनी ट्रांसफर इन सबसे जल्दी, यानी रिसीव कटी नहीं और मनी ट्रांसफर डन, सिर्फ और सिर्फ एबल एक्सप्रेस की रिलायबल सर्विस के साथ। पाकिस्तान में डेडिकेटेड कस्टमर सर्विसेज, हमारी पहचान एबल एक्सप्रेस। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल नाउ 416-230-4444। एबल एक्सप्रेस।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
दरहम दीवास एंड बुशरा साकिब लाए आपके लिए माह रमजान में स्कारप्रो और पिकरिंग में रमजान मार्केट्स।
50 से ज्यादा वेंडर के साथ, वो भी एक ही छत के नीचे। क्लोथिंग, ज्वेलरी, स्किन केयर, हिना, रमजान डेकर, फूड, हिजाब एंड सो मेनी अदर बूथ्स। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, फ्री हिना ऑल डे फॉर किड्स। पिकरिंग में एट मेमन सुपरमार्केट, 1899 ब्रॉक रोड, ऑन अप्रैल 16 फ्रॉम 1 PM टू मिडनाइट। फॉर स्टॉल बुकिंग एंड स्पॉन्सरशिप प्लीज कॉल बुशरा साकिब एट 6472295553, 6472295553।
इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो सारा साल से कम्युनिटी की खिदमत करता चला आ रहा है। यहाँ पर कम्युनिटी के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज दी जाती हैं, जैसा कि मैयत और तदफीन, जरूरतमंदों के लिए फूड की तकसीम, निकाह, मशावरती खिदमत, फुल टाइम हिफ्ज प्रोग्राम, इवनिंग क्लासेस, संडे इस्लामिक स्कूल, सीनियर्स प्रोग्राम, रूहानी और मजहबी सेमिनार। इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो के अखराजात आपके दिए हुए डोनेशन से पूरे होते हैं। इन्हें आपके डोनेशंस की जरूरत है। डोनेशन के लिए कॉल कीजिए 416-321-0909 या विजिट कीजिए www.islamicfoundation.ca।
क्या आपकी पॉलिसी इस पेंडेमिक में आपको कवर कर रही है? मालूम कीजिए मुझसे कांटेक्ट करके। मैं हूं फजल वदूद, इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज से। मेरा नंबर है 905-607-5000। 27 साल का इंश्योरेंस और अंडरराइटिंग का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको एक ऐसा प्लान दिलवाया जाए जो कि बेहतरीन हो और गारंटेड लोएस्ट रेट पे हो। कॉल कीजिए 905-607-5000। और हाँ, हर जुमेरात शाम को चैनल 770 पे मेरा प्रोग्राम सुनना ना भूलिएगा, जिसमें हम आपसे शेयर करते हैं बेहतरीन टिप्स इंश्योरेंस के बारे में।
एक दफे से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए। बुशरा बीबी ने हमको तावन दिया। ओहो, पाकिस्तान वाली बुशरा बीबी नहीं, ये बुशरा साकिब हैं, यहीं टोरंटो में 6 प्रोग्राम करवा रही हैं। एक हो गया, अब इनका नेक्स्ट प्रोग्राम 16 अप्रैल को है और मुझे सिखाया गया था कैसे कहना है, मेमन सुपरमार्केट। आपने मेमन ही तो कहा था मुझे,
मेमन सुपरमार्केट
क्या? तो मैंने क्या कहा, मेमन सुपरमार्केट में। अच्छा, मुझे अब यूं याद करवाओ कि जो जीशान जो है ना वो मेमन, ठीक है। मेमन सुपरमार्केट में इनका अगला प्रोग्राम है, 16 अप्रैल को है, जहाँ पे क्लोथिंग, ज्वेलरी, हिना, फूड, फेस पेंटिंग एंड एवरीथिंग। इट विल बी फुल ऑफ फन। बुशरा इज वर्किंग हार्ड फॉर सम ग्रेट सरप्राइज। तो कोई टिकट नहीं है, आपने जरूर पहुंचना है। बिश्नोई साहब गिफ्ट नंबर 6472295553 2295553। हमारे साथ हैं जनाब खबर नहीं हाशमी साहब, और इमरान खान साहब ने कहा है कि मुनहरफ अराकीन को तहयात ना अहल कर दिया जाए, और क्या क्या कहा है। और जनाब आज तो DGISPR के जनरल बाबर ने भी कमाल कर दिया, मतलब खबर नहीं हाशमी से सुनते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या हो गया पाकिस्तान आज?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो है आज की पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर यही है, DGISPR जो हमारे मेजर जनरल बाबर इफ्तखार हैं, तो उन्होंने बयानिया जो है इमरान खान का उसको टोटली मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अमरीका ने हुकूमत के खिलाफ ना कोई साजिश की, ना इमरान खान के खिलाफ जो तारीख अदम एतमाद है उसमें अमरीका को कोई हाथ है, और अमरीका ने पाकिस्तान से कोई अड्डे भी नहीं मांगे।
तो जो ये इंटरनेशनल अखबारों में जिसमें गार्डियन भी है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी है, जिसमें एंथनी ब्लिंकन ने भी कहा था, जिसमें अमेरिका की सरकर्दा शख्सियात ने अड्डों के बारे में बात की थी, तो क्या वो सारे के सारे BS थी?
ये हमारी फौज के तर्जुमान ने इसकी नफी की है। यूरोप और अमेरिका में क्या क्या लिखा जा रहा है, अमेरिका ने उनसे अड्डे मांगे हैं नहीं मांगे, मैं सिर्फ आपको DGISPR जो हमारे हैं उनकी आज की जो वजाहत है वो ये है कि अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे ही नहीं। और जो इमरान खान का बयानिया है वो उनको कथित तौर पे मुस्तरद किया है। तो इसीलिए मैं चाहता था आरफा बीबी कि हम स्टार्ट करते हैं इमरान खान से।
जी सर,
इमरान खान से। इमरान खान ने अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद गुज़िश्ता रात पेशावर में बहुत बड़ा जलसा किया है, ये उनका पहला अवामी जलसा था जिसमें वो रात 11 बजे पहुंचे और रात 11 बजे तक जो है उनका वो पंडाल भरा हुआ था। तो इसको एक बड़ा कह सकते हैं। तो इसमें इमरान खान ने बेशुमार सवालात उठाए हैं, तो वो कह रहा है कि रात को अदालतें कैसे खुल गई रात को 12 बजे, उन्होंने सवाल किया है, और जजेस ने अमरीकी खत पढ़ा है और उसके बावजूद इन्होंने कहा है, तो उनको जो अमरीकी हैं उनको तो गुलामों की आदत पड़ी हुई है, तो अब वो सड़कों पे आ गए हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के लिए और कराची के लिए और लाहौर के लिए डेट्स का भी अनाउंस कर दिया है। 16 तारीख को वो कराची में और 19 को लाहौर में जलसा करेंगे और देखें कि वो ताकत का मुजाहरा किस तरह करते हैं। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान जो है उनके साथ लोग हैं, उनकी जो PTI के लोग हैं वो अभी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बाकी ये इमरान खान ने जो बड़ी बात की कि ये 1970 नहीं है कि पाकिस्तान में जब भुट्टो को हटाया गया था, यानी कि भुट्टो की फांसी का जिक्र किया है कि ये 1970 नहीं है कि आप मेरे साथ भुट्टो वाला सलूक कर दें, मेरे पास 6 करोड़ नौजवान हैं जिनके पास मोबाइल फोन है और ये सोशल मीडिया का दौर है जी। तो ये उन्होंने
सर आपने जब ये बात करें तो मैं लेके आना चाहती हूँ, अभी आपने जब कहा कि जनरल साहब ने कहा है कि कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं था, तो वो जब सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई थी और उन्होंने एक उस पे नोटिस भी ले लिया था, तो वो क्या था, वो भी सब झूठ था?
नहीं सर, नहीं, उसमें वो बात जो है वो बड़ी सफारती गुफ्तगू करते हैं हमारे मेजर साहब, बड़ी टेक्निकल बात की है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो अमेरिका का लेटर हमारे पास आया ये एक रवायती मुरासला है जो सफारतकार अपनी हुकूमतों को देते रहते हैं कि उसने ये कहा और ये कोड वर्ड्स में होता है, और कौमी सलामती कमेटी ने किसी भी लफ्ज में साजिश का नहीं करार दिया था। जब कौमी सलामती कमेटी का इस लेटर पे اجلاس ہوا تھا تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خط سازش ہے. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں ڈپلومیٹک لینگویج میں کہ جی فلاں ملک نے فلاں سفیر کے ذریعے ہمیں ایک میسج ملا ہے, اور یہ تو روایتی ایسے میسیجز ملتے رہتے ہیں ایک ملک کو دوسرے ملکوں کی طرف سے. جس کو خط ملتا ہے وہ ملک کہتا ہے کہ بھائی یہ مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے, یہ تو میرے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے.
آپ کو اور خبر نعیم صاحب مختصراً ہم اس کو میں تین چار کال بھی لینا چاہتی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان نے رکنا نہیں ہے, آرمی نے اور کل کا ایک جو بیانی آیا کہ جو لوٹا کہے گا اس کو ہم اس سے زیادہ ماریں گے اور زیادہ سے زیادہ سزا دیں گے, آرمی کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے جو آرمی کے اگینسٹ ہے, مگر اس سے پہلے بے شمار دوسری پارٹیوں نے آرمی کو براہ راست ہٹ کیا تھا, کیا ان بیانیوں کو بھی نوٹس میں لایا جائے گا؟ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کوئکلی اگر آپ آنے والی صورتحال کو کور کریں کہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے وہ کیا ہوگا؟
دیکھیے جی پنجاب میں تو الیکشن ہونا ہے, پنجاب میں نون لیگ ہی حکومت بنائے گی, ان کو ڈیٹ دے دی گئی ہے عدالت کی طرف سے 16 تاریخ کو الیکشن ہو رہا. تو جو ہمارا ترجمان ہے فوج کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار, انہوں نے ایک اور بات بھی کہی, چیف کا عمران خان صاحب سے ذاتی طور پر بہت اچھا تعلق ہے. یہ بات بڑی غور طلب ہے. الیکشن ہوتے ہیں, 1.5 سال بعد کر لیں آپ, 3 مہینے بعد کر لیں, 9 مہینے بعد کر لیں, تو یہ آرمی کے اور عمران خان کے تعلقات میں سمجھتا ہوں بحال ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب غصے میں ہیں, وہ جس چیز کو سفارتی خط کو وہ اپنے لہجے میں کنسیو کر رہے ہیں فوج نے یا سلامتی کمیٹی جو ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے کمیٹی بنی ہوئی ہے قومی سلامتی کمیٹی, اس نے اس میں سازش کا بو نہیں محسوس کی, یہ تو فوج نے ڈکلیئر کر دیا ہے. اور یہ بھی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ 9 اپریل کی رات کو وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. ان کی
ریٹ کس کو کہا گیا تھا؟
جی
وہ کہتے تھے چوہے نے اناؤنس 5 اور جنرلوں کا انتخاب کر لیا اور چوہے نے نوٹیفیکیشن نکال دیا.
نہیں یہ بالکل یہ جو باتیں ہیں, دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا
یہ من گھڑا تھا,
بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پر ہم وہ خیالی گفتگو نہیں کر سکتے, جیسے وائرل گفتگو ہوتی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ان کا کہنا ہے فوج کا کہ خود عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے آرمی چیف سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا جائے, اور یہ جو 3 آپشن ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ جی شاید فوج نے ان کو دیے تھے, فوج کا ترجمان کہتا ہے کہ یہ 3 آپشن خود عمران خان کے تھے اور عمران خان نے کہا تھا کہ میرے یہ آپشن جو ہیں اپوزیشن سے دیں اور میرا اور ان کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کرائیں. اور جو 3 آپشن تھے اس میں تیسرا آپشن جو تھا وہ اسمبلیوں کی تحلیل تھا, اور عمران خان صاحب نے فوجی قیادت سے کہا تھا کہ میں اس صورتحال میں اپنی اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دیتا ہوں. تحلیل کرنے کے بعد یہی ہونا تھا الیکشن ہونا تھا. تو جب فوجی قیادت نے اپوزیشن سے بات کی ان کے آپشن فوج کے تھے یا عمران خان کے تھے, بقول ہمارے فوجی ترجمان کے تو پی ڈی ایم کے پاس سے جب وہ تیسرا آپشن لے کر گئے جو عمران خان کو منظور تھا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں, تو اپوزیشن جماعتوں نے فوجی قیادت کو جواب دیا کہ اب وقت گزر چکا ہے, ہم نہیں مانیں گے, ہم اپنے ہی پلان پر چلیں گے. یہ جو ساری صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
خوانیم ہاشمی صاحب, ہم ایک دو کالز بھی لینا چاہتے ہیں.
جی ضرور ضرور.
کیا لگتا ہے آپ کو جو چیف منسٹر کی کال, بائی دا وے آپ نے ریحام خان کو بھی میرا خیال ہے نامنیٹ کر دیا ہے, اور جو آپ کے سرور صاحب ہیں, مطلب یہ دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. تو وہ سرور صاحب جو آپ کے گورنر تھے, ان کی بیگم کو بھی نامنیٹ کر دیا گیا ہے ایز اے ممبر پارلیمنٹ.
یہ ایسے ہی ہوتا ہے جی پاکستانی سیاست میں, یہ تو اس میں خاندانی سیاست ہے. باقی پارٹیاں دیکھ لیں, اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی فیملی نہیں ہے, ان کی اگر بیویاں چھوڑتے رہے ہیں اگر,
مگر سر بہنیں بھی تو ہیں نا, بہنوں کو لا سکتے تھے, بہنوں کو بھی نہیں لے کے آئے.
جی بہنوں کو نہیں لائے وہ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, وہ اپنی بہنوں کو نہیں لائے. لیکن جب شوکت خانم ہاسپٹل بنا تھا,
جی,
تو میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ شوکت خانم جب ہاسپٹل بنا تھا تو اس کی جو مینجمنٹ تھی, ڈائریکٹر شپ جو تھی, جو پانچ سات ڈائریکٹر تھے, وہ سارے عمران خان کے فیملی تھے. ان کی بہنیں بھی ڈائریکٹرز تھیں, وہاں سے تنہائی بھی لیتی تھی.
ٹھیک سر, ٹھیک سر. مگر کیا لگتا ہے آپ کو چیف منسٹر کون بنے گا؟ جناب حمزہ صاحب ہی بنیں گے
جی. پنجاب میں تو وہی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جب حمزہ میدان میں ہے اور مرکزی حکومت ہے تو یہ سوچنا بھی پاکستان میں محال ہے کہ طاقتور کے مقابلے میں کمزور امیدوار جیت جائے گا.
مگر ان کے پاس تو تجربہ بہت ہے, پرویز الہی کے پاس.
جی تجربہ تو بہت ہے نا, اپوزیشن جو متحدہ اپوزیشن ہے انہوں نے ان کو نومینیٹ کر دیا تھا پنجاب کا وزیر اعلیٰ, متحدہ اپوزیشن نے. یہ ان کے لیے بہت بڑی فتح تھی کہ متحدہ اپوزیشن جس میں 10 پارٹیاں شامل ہیں اور اس میں 3 بڑی پارٹیاں بھی شامل ہیں, وہ ان کو وزیر اعلی پنجاب بنا رہے ہیں. لیکن صبح جب میٹنگ ہوئی اور شام کو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے بلایا, عمران خان صاحب نے,
بس انہوں نے عمران خان صاحب, ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے.
اب یہ ہوا تھا وہاں پہ
3 کالز, جس 3 کالز. جی سر 4 کالز. جی مجھ بھائی آپ لیتے جائیں, اپنا نام بتائیں کوئکلی, سوال کیجئے گا اور خبر نہیں میں آپ کے ساتھ.
جی ہلو, السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں سر؟
وعلیکم السلام.
کون بات کر رہے ہیں؟
جی میں تو یہ بات کر رہا ہوں, میرا خاور صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگلے 24 مہینے میں جس طرح کے ٹیمپریچر بہت گرم ہے پاکستان کا, عوامی حالات اور معاشی حالات یہ کیسے دیکھتے ہیں, ذرا بیان فرما دیں.
بہت شکریہ سر آپ کا, بڑی شکریہ آپ کا. جی ہلو,
سوال بھی گرم تھا, لائن بھی گرم ہو گئی اور لائن کٹ گئی.
نہیں نہیں, قاور صاحب ہیں وہاں پہ. قاور بھائی آپ سن رہے ہیں میری بات؟ ہاں جی. ان کا سوال, دو سوال تھے ان کے, سیاسی اور معاشی حالات کو اب اگلے 24 مہینے میں کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟
میں نے آپ سے کہا
اختلافات ہو, میرے نظریاتی اختلافات ہوں یا کوئی بھی ہو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون, میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ انوسینٹ لوگوں کی جماعت ہے, یا یہ ان پر جو الزامات ہیں, اور ان کو آپ نے دیکھا کہ باپ بیٹا جو ایک وزیر اعظم بن رہے ہیں اور ایک وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں, اور ان کی کرپشن کے الزامات میں جس دن فرد جرم عائد ہونا تھی اس دن وہ حلف اٹھا رہے ہیں وزارت عظمیٰ کا, ٹھیک ہے نا؟ ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات جو انہوں نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو معاشی مینجمنٹ کرنا آتی ہے.
اچھی بات,
اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر ایک سوال ہے کہ آپ کے مولانا فضل الرحمان تو بڑے خفا ہوں گے, وہ تو بیچارے پریزیڈنٹ بننے کے چکر میں تھے, زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ بن جانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی وزارت نہیں چاہیے پیپلز پارٹی.
اس کی پیپلز پارٹی کو ملیں گے 107 کے قریب وزارتیں مل رہی ہیں ان کو, 13 وزارتیں میرا خیال ہے نون لیگ لے رہی ہے.
نہیں مگر ہم آپ کے
مل رہی ہیں,
بلاول نہیں آ رہے, وہ ہی ول نیور, ہی از اے پارٹی لیڈر, وائی وڈ ہی ورک انڈر سم ادر پارٹیز لیڈر. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو ڈبوئیں گے بھی یہ شہباز شریف.
میں آپ پر یہ ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جو اپوزیشن نمبر گیم جیتی ہے
سب زرداری کی وجہ سے،
یہ زرداری کی وجہ
کریڈٹ جاتا ہے،
اور صرف اس کو کریڈٹ جاتا ہے جو اس نے چار چار بندے، اگر وہ باپ کے چار بندے نہ توڑ کے لاتے تو یہ عدم اعتماد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
بالکل صحیح بات ہے. مگر اب فضل الرحمان صاحب کا کیا بنے گا؟
فضل الرحمان صاحب لیڈر ہیں، وہ فضل الرحمان صاحب کا احترام ہے جی،
مگر پریزیڈنٹ تو نہیں بن سکیں گے.
پریزیڈنٹ نہیں بنیں گے تو، لیکن وہ اپنی جو حکمران پارٹی یا متحدہ اپوزیشن حکمران پارٹی ہے نا، اس کا سربراہ ہونا بھی تو ایک اعزاز ہے.
او تیری نیسی، پیسے ملتے ہیں تنخواہ پہ؟
نہیں، آپ دیکھیں نا ہندوستان میں کیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے سر،
نیکسٹ کال. جی ہلو، السلام علیکم.
ہندوستان ہم سے 100 سال آگے ہے، پہلے ہم کہتے تھے
ہلو
ویسٹ ہم سے آگے.
جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں سر؟
جی محمود بات کر رہا ہوں.